إن الله پاکستان نے جو احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا کا عنوان ہے کہ احمدیوں کی, یعنی انہوں نے تو قادیانی لفظ استعمال کیا ہے, کہ قادیانیوں کی غیر مسلم سرگرمیوں کے خلاف آرڈیننس, تاکہ قادیانیوں کو ان غیر مسلم سرگرمیوں سے باز رکھا جا سکے. اور غیر مسلم سرگرمیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اذان, کہ غیر مسلم اگر کوئی اذان دے گا تو یہ غیر مسلم سرگرمی کہلائیں گے. اس لیے صرف غیر مسلموں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور مسلمانوں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکتی. دوسری غیر مسلم سرگرمی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, تو مسلمان کہنا ایک بہت بڑی غیر مسلم سرگرمی بن گئی. اور چونکہ یہ غیر مسلم سرگرمی ہے, اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور مسلمانوں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت دی جا سکتی. الحاضر قیاس یہ منطق آگے چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اس وقت اس کے تجزیہ کے متعلق تو میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. یہ تنظیم میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی وہ غیر مسلم سرگرمیاں اگر یہ ہیں تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے, پھر تو سب کو روکنا چاہیے ان غیر مسلم سرگرمیوں سے. مسلمانوں کو بھی روکنا چاہیے, غیر مسلموں کو بھی روکنا چاہیے. صرف قادیانی رہ گئے ہیں ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے. تو حکومت نے پھر ایک وائٹ پیپر شائع کیا. ویسے تو وہ وائٹ پیپر چونکہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور دل آزاری نہایت گندی قسم کی کی گئی ہے, حضرت عبدالمسیح مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت بیہودہ اور ذلیل الزام لگائے گئے ہیں, کوئی بنا نہیں ہے اس کی, نہ قرآن پر بنا ہے نہ سنت پر بنا ہے. اس لیے سیاہ کاغذ کو اس کو نام رکھنا چاہیے, سفید کاغذ نام رکھنے کی تو کوئی اس کی گنجائش نہیں. لیکن اس پہلو سے شاید ٹھیک ہو کہ سفید جھوٹ بھی کہا جاتا ہے, تو اگر اس محاورے کے روح سے اسے وائٹ پیپر کہا جاتا ہے, یعنی فساد ابیض, تو پھر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور ہے بھی وہ یہی انہی معنوں میں, باوجود اس کے کہ اس میں شدید دل آزاری سے کام لیا گیا ہے. ایک پہلو سے مجھے خوشی ہے کہ کچھ بولے تو صحیح ہو, اور جماعت کو اس کے نتیجے میں اپنے جوابی کاروائی کا مؤثر موقع ملے گا. لیکن بولے عجیب طرح ہیں. ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ایسے فرضی حوالے نکالے گئے ہیں جو کسی اور موقع پر کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں, کچھ اور مضمون رکھتے ہیں, اور ان سے ان کو اس طرح آخذ کیا گیا ہے کہ گویا وہ شدید دل آزاری کا موجب ہے مسلمانوں کے لیے. اور دوسری طرف وہ اصل کتب ضبط کر لی گئی ہیں جن میں وہ حوالے ہیں, اور ان کی اشاعت کی اجازت نہیں. گویا کہ وائٹ پیپر تو یہ تشہیر کرے گا کہ دیکھو یہ ہماری دل آزاریاں ہو رہی ہیں, یعنی دل آزاریاں تو جاری رہیں گی, اور اصل کتاب کو دیکھ کر یہ معلوم کرنے کا موقع کسی کو میسر نہیں آئے گا کہ دل آزاری ہوئی بھی تھی کہ نہیں. اس کو تو کسی شاعر نے خوب ادا کیا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آتا, کہ پتھروں کو تو باندھ دیا گیا ہے اور کتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. دل آزاری, فرضی دل آزاری کو تو آزاد کر دیا گیا ہے اور جوابی کاروائی کو بند کر دیا گیا. تو جتنی خوشی اس طرح سے ہو سکتی تھی کہ ایک جواب کا موقع پاکستان میں میسر آ جائے گا, وہ خوشی تو ساتھ ہی اس طریقے کار نے ظاہر کر دی. لیکن جہاں تک غیر دنیا کا تعلق ہے, خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا موقع تو بہرحال میسر آئے گا. कहां कहां हुकूमत का हुकूमत पाकिस्तान का कानून अहमदियों की जुबान बंदी करेगा। आखिर आजाद दुनिया वसी पड़ी है, वहां से आवाज उठ सकती है, उठेगी, फैलेगी। और जहां जहां इन्होंने ये तकसीम कराया है उससे ज्यादा कसरत के साथ इंशाल्लाह ताला इसके नुकता ब नुकता जवाब तैयार करके तकसीम किए जाएंगे। कुछ तो मैं अपने खुतबात में भी बयान करूंगा ताकि वो लोग जिन्हें पढ़ने का ज्यादा मौका मैसर नहीं आता और खुतबे जरूर सुनते हैं उन तक भी बात पहुंच जाए, और उस तरह अहमदियों को अपने दिफा में कुछ हथियार मैसर आ जाए। अनपढ़ अहमदी भी जब खुतबा गौर से सुनता है तो काफी हद तक समझ जाता है बात को, इसलिए उनके लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और अगर ये क्योंकि लंबा भी बहुत हो सकता है और खुतबात दूसरे मकासिद के लिए भी इस्तेमाल करने होते हैं, इसलिए अगर कुछ हिस्सा रह जाए बीच में से तो वो वैसे भी पंपलेट की सूरत में छपाना ही था, वो छपाया जाएगा और सब तक वो पहुंच जाएगा, इसलिए कोई खला नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। जहां तक गैर मुस्लिम दुनिया का ताल्लुक है, उनके सामने जो इन्होंने मौके इख्तियार किए हैं वो भी सरासर झूठ और गैर मंतकी और नहत लगव मौकफ है। उनके मुतल्लिक जहां जहां इत्तला मिलती है हम उसका जवाब बताते हैं, और ज्यादा देर तक तो किसी को धोखे में रखा नहीं जा सकता। उनके मौकफ की एक मिसाल ये है जो न्यूज वीक में शायद हुई, एक बड़े पाकिस्तान के अफसर ने अपने जवाब में ये बात पेश की कि देखो एक तो बड़ी मंतकी बात है, एक गैर मुस्लिमों को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो मुसलमानों का भेष ओढ़कर, भेष बदलकर, मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर वो लोगों को धोखा दे कि वो मुसलमान है। आखिर हुकूमत का फर्ज है कि धोखेबाजों को पकड़े और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये एक मंतकी दलील उन्होंने कायम की गैर दुनिया के लिए, जिनको कुरान सुनने से तो गलत कोई नहीं है, ना उनको ये पता है कि कोई गैर मुस्लिम हकीकत में है भी कि नहीं, लेकिन उनके सामने इतनी सी बात रख दी गई कि हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया और एक असेंबली का हवाला दिया गया कि फलां असेंबली ने यह फैसला किया, इसलिए इस फैसले में भी हमारा कसूर कोई नहीं, हमने तो विरसे में पाया था यह फैसला। और जब हमने विरसे में यह फैसला पाया कि फलां जमात गैर मुस्लिम है तो इस फैसले पर निफाज करवाना, अमल दरामद करवाना हमारा काम था, वो हमने करवाया है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। ये बात तो उन्होंने पहुंचा दी लेकिन इसके अंदर इतनी लघवियात मुजमिर हैं कि जब वो हम दूसरों को पहुंचाएंगे और पहुंचा रहे हैं तो कैसे कोई यकीन कर सकता है कि धोखा लंबे अरसे तक चल सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सबसे पहले तो असेंबली की हैसियत सुन लीजिए, ये वो असेंबली है जिसके ऊपर खुद पाकिस्तान ने एक व्हाइट पेपर शायद किया और सारे असेंबली के मेंबरान का मुंह काला कर दिया उस व्हाइट पेपर के लिए, और ये ऐलान किया कि इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि शरीफ इंसान कहला सके, मुसलमान तो दरकिनार, एक आम शरीफ इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं, ये लोग फलामी थे, जितनी बदियां हैं वो उन लोगों के मुतल्लिक गिनाई गई और ये छपा हुआ पेपर मौजूद है। इसलिए हुकूमत मजबूर थी ऐसी नई हुकूमत ऐसी असेंबली को खत्म करने पर अखलाकन पाबंद थी। उस असेंबली ने जिनका ये हाल है उन्होंने फरमाते हैं कि कानून पास किया था शरी, और उसकी शरी हैसियत है क्योंकि उस असेंबली ने जिसमें सारे मुल्क के नुमाइंदे मौजूद थे ये ऐलान किया कि जमात अहमदिया गैर मुस्लिम, तो हम तो उस असेंबली के पाबंद हैं, इसलिए लाजमन हम इसकी आगे बढ़कर मजीद पाबंदी करवाएंगे। तो जिस असेंबली की अपनी हैसियत यह थी वो शरीफ इंसान कहलाने की इनके नजदीक मुस्तहिक नहीं थी, बाहर की दुनिया के नजदीक बेशक हो, उसके फैसले पर इस कदर सर तस्लीम खम करना और सर झुका लेना एक बड़े ताज्जुब की बात है। और मजीद बात यह कि उसके फैसले की हालत यह है कि सारा कानून जो बड़ी मेहनत से उसने तैयार किया था और दस्तूर एहसासी की सूरत में मुल्क को दिया था, वो मुअत्तल और तरमीम की इज्जत अफजाई हो रही है सिर्फ। यानी 73 का कानून तो मुअत्तल और 74 की तरमीम जारी। आखिर कुछ तो एहतराम होना चाहिए ना असेंबली का। ये तो ऐसी बात बनती है कि एक औरत सुबह उठ के खा रही थी सेहरी के वक्त, किसी को पता था कि वो रोजा नहीं रखती। उसने कहा, बीबी तुम रोजा तो रखती नहीं, तो ये आधी रात को उठ के खाना क्यों खाती हो? उसने कहा, रोजा नहीं रखती तो काफर तो ना हो जाऊं, कुछ तो एहतराम करूं रमजान का। जहां तक खाने वाला हिस्सा है वो तो मुझे पूरा करना चाहिए। वहां चुनाचे अफ्तारी भी करती थी और सहरी भी करती थी और बीच में भी खाना खाती थी। तो ये एहतराम है इनके नजदीक उस असेंबली का, जिसकी सारी बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम दस्तूर असासी तो इस दो कौड़ी के लायक ना रहा हो और ये रह जाए बाकी। और फिर एक और इसमें धोखा और मुगालता अमेजी ये कि ये भी शक्ल नहीं बन रही अमलन। अमलन ये शक्ल बनती है कि सारा दस्तूर मा तरमीम के मुअत्तल था और ऑर्डिनेंस के जरिए दोबारा ये तरमीम जारी की गई। तो एक शख्स का फैसला है। अब तो असेंबली वाली बात खत्म हो गई। जब सारा कानून मुअत्तल हो गया और तरमीम भी एक दफा मुअत्तल हो गई, दोबारा जारी किया गया एक ऑर्डिनेंस, तो फिर अब इसकी कानूनी शक्ल सिर्फ यह है कि एक शख्स का फैसला है। तो ये चीजें जब दुनिया के सामने आएंगी तो पागल तो नहीं दुनिया के, वो ना समझ सके। मगर खतः नजर इसके कि यह फैसला किसका था, जैसा कि मैंने बयान किया है, ये मौकफ ही जमातों का बुलंदा है कि मुनाफत पर मुनाफत की हम कैसे इजाजत दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुनाफत कहते किसको हैं, कुरान और हदीस की बात करते हो तो उसे मालूम करो और मुनाफिक को किस चीज की इजाजत दी जा सकती है और किसकी नहीं दी जा सकती। अव्वल तो ये फैसला कि किसी के दिल में क्या है, जो वो दावा करता है उसके दिल में वो है भी कि नहीं, सवाए खुदा के कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप उसको जो चाहे कहें, ये नहीं कह सकते कि जो तुम मुंह से कह रहे हो हम ऐलान करते हैं कि तुम्हारे दिल में ये नहीं है। ये काम सवाय खुदा के और कोई नहीं कर सकता। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा की जिंदगी में एक भी ऐसा वाकया नहीं कि किसी ने अपने आप को मुसलमान कहा हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफा ने यह रद्द कर दिया हो, फरमाया हो कि तुम अंदर से गए मुस्लिम और मुनाफिक हो, एक भी ऐसा वाकया नहीं। जहां तक कुरान का मुतालिया करते हैं कि कुरान इस मौजू पे क्या फरमाता है, तो जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई थी उसमें इसका मौसिद जवाब मौजूद है, क्योंकि कुरान करीम तो एक कामिल किताब है, किसी पहलू को नहीं छोड़ती। कोई मुस्तकबिल का फितना ऐसा नहीं है जिसका जिक्र और उसका तदारुक कुरान करीम में मौजूद ना हो। चुनाचे सारे ऑर्डिनेंस का तदारुक कुरान करीम में मौजूद है, दलील का भी और जो बाद में मौकफ इख्तियार किया गया और ऑर्डिनेंस की जो तफासील हैं, जब मैं आपको सुनाऊंगा इसकी आयत के की तशरी तो आप हैरान होंगे कि इन सब चीजों का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हुए, कालतिल आराब आमन्ना, आराब ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिन, हम तुम्हें बता रहे हैं जिसकी दिल पर नजर है कि ईमान नहीं लाए, कह दो इनको बेशक लम तुमिनू, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। वलाकिन कूलू असलमना, लेकिन तुम्हारा मुसलमान कहलाने का हक मैं फिर भी नहीं छीनूंगा। यह कहने के बावजूद कि खुदा ने मुझे खबर दी है कि तुम ईमान नहीं लाए, साथ ही उनका खौफ दूर करो। अगर उनको यह खौफ पैदा हो जाए कि अब शायद वो मुसलमान नहीं कह सकते अपने आप को, तो खुलकर बता दो कुलू असलमना, मैं तुम्हें कहता हूं जो अबुल मुस्लिमीन कि तुम इस्लाम कह सकते हो कि हम इस्लाम जाए बलाकिन कुलू असलम वलम्मा यदखुल ईमानों की कुलू बेकू, ये कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं हालांकि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हो। इससे बड़ा मुनासिब भी कोई मुतसव्वुर हो सकता है जिसके मुताबिक खुदा गवाही दे आसमान से और अपने सबसे बरगजीदा रसूल को खुद बताए, असदक उस सादिकीन को इतला दे रहा कि ये लोग जो दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, इनके दिलों में ईमान ने झांक के भी नहीं देखा, लेकिन साथ ही ये हुक्म भी देता है इसके बावजूद उनसे मुसलमान कहलाने का हक तुमने नहीं छीनना, बल्कि अपनी जुबान से ये कहो हमें इल्म है ईमान तुम्हें हासिल नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, फिर भी खुदा मुझे कहता है कि तुम्हें कह दूं कि तुम मुसलमान कहो अपने आप को, इससे तुम्हें कोई रोक। तो जहां तक ये जो दावा था कि मुनाफ़िक़त से मुसलमान बनते हैं इसलिए हमने इनको रोका है, ये आयत किस तरह उसको पारा पारा कर रही है सारे को, इस आयत का पहला हिस्सा, यानी सोचते नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान करीम से साबित है कि मुनाफिकों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, एक सूरह अल मुनाफिकून नाज़िल हुई उसके ऊपर और जगह जगह उन मुनाफिकीन का जिक्र है। तो आज इनको पता चला है कि मुनाफिकीन से क्या सलूक होना चाहिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म भी कोई नहीं था जिन पर कुरान नाज़िल होगा। इस कसरत से मुनाफिकीन का जिक्र हो और एक मुनाफिक को भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती गैर मुस्लिम कहने पर अपने आप को मजबूर न किया, बल्कि रईसुल मुनाफिकीन वो जो दिलाजारी में इस हद तक बढ़ गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एक गज़वे से वापसी पर उसने ये ऐलान किया कि जो इस मदीना इस शहर का सबसे मौजूद शख्स है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस शहर के सबसे ज़लील शख्स को निकाल देगा वह जब घर पहुंचेगा। और सहाबा जानते थे जो क्या कह रहा है, चुनाचे इस कदर उनके खून में जोश पैदा हुआ इस इंतहाई खौफनाक हतक के ऊपर इस गुस्ताखी पर कि उनकी तलवारें बेनियाम होने लगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कुछ नहीं कहना इसको, रोक दिया हुक्मन, यानी मुनाफिक भी मुनाफिकों का सरदार और इतने खौफनाक जुर्म का वो मुर्तकिब हो गया हो कि दुनिया के सबसे मौजूद इंसान को दुनिया का सबसे ज़लील इंसान कह रहा और हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल इस दिल आदारी पर यह है कि ना सिर्फ ये कि सहाबा को मना फरमाया बल्कि जब उसका बेटा अपना जो एक सच्चा मुसलमान था वो गैरत में ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने इजाजत चाहिए कि या रसूलल्ला मुझे इजाजत दें मैं इस बात का सर कलम करता हूं, तो आपने फरमाया तुम्हें भी इस बात की इजाजत। शायद उसके दिल में यह ख्याल आया हो कि बाकी लोगों को अगर इजाजत दी तो शायद रसूलल्लाह सल्लम को मेरा ख्याल हो मेरे जज्बात का, कि बेटा तो मुखलिस है इसके दिल को तकलीफ ना पहुंचे कि कोई और इसके बाप को कत्ल कर रहा है। कैसा अजीम नमूना वो दिखाता है, खुद हाजिर होता है कहता है या रसूलल्लाह मुझे इजाजत है, आपने फरमाया नहीं, लेकिन वो ऐसा तड़प रहा था ऐसा बेकरार था कि जब मदीने में दाखिल होने का वक्त आया तो आगे जाकर रास्ता रोक के खड़ा हो गया अपने बाप, उसने कहा खुदा की कसम मैं तुम्हें नहीं दाखिल होने दूंगा इस शहर में, जब तक यहां ये ऐलान ना करो कि तुम दुनिया के सबसे जलील इंसान हो और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे मौलवी इंसान। उसने ये ऐलान किया और फिर उसको मदीने में दाखिल होने की जरूरत थी। तो जो मुनाफिकों का सरदार था वो मुसलसल अपने आप को मुसलमान कहता रहा और आगरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश रही कि मैं खुद उसका जनाजा पढ़ूं। ये है उस्वा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है कुरान करीम की तालीम मुनाफिकीन के मुताल्लिक। अब कोई नया कुरान नाजिल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जहां नई तालीमात जारी की जाएंगी मुनाफिकीन के बारे में, और फिर ये भी पता नहीं कि मुनाफिक है कौन, तुम मुनाफिक हो या वो मुनाफिक हैं जिनके मुतल्लिक तुम कह रहे हो कि ये मुनाफिक है, इसका फतवा कौन सादिर करेगा? तुम कहते हो हमें कि तुम मुनाफिक हो, उसी मुंह से हम कह देते हैं तुम मुनाफिक हो, फैसला कौन करेगा मुनाफिक का? मुनाफिक का फैसला तो खुदा के सिवा कर कोई नहीं सकता, और खुदा का यह फैसला है कि जब मैं फैसला कर दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं है कि जबरदस्ती करो, ये मेरा काम है जबरदस्ती करूं या ना करूं। चुनाचे आहदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक फरमाया इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैफ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दुनिया का सरदार है तू, लेकिन तुझे दारोगा नहीं बनाया, सिर्फ नसीहत करने वाला बनाया। लस्ता अलैहिम बिमुसैफ, ना जबरदस्ती तू इनको तब्दील करेगा, ना फिर जवाब तलबी की जाएगी कि क्यों तुमने जबरदस्ती नहीं की, चाहते थे दोनों माने, लेकिन ये दारोगा बन गए और दुनिया को कहते हैं कि हम कैसे इजाजत दे सकते हैं कि इस्लामी मुल्क में कि मुनाफिक बस रहे हों और वो अपने आप को मुसलमान बना रहे हैं और दुनिया को धोखा दे रहे हैं। जो यकीनी मुनाफिक थे, जो जिनकी मतलब खुदा ने गवाही दी थी, उनसे यह सलूक क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यह है उनको क्यों इजाजत दी गई कि वो अपने आप को मुसलमान कहते रहे, और जो फर्जी मुनाफिक हैं उनसे यह क्यों सलूक किया जा रहा है? लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैंने तो यह अर्ज की थी कि लघुयात का एक कुलंदा है। अमरे वाकया क्या है? मुनाफिक दूर करने के लिए नहीं बल्कि मुनाफिक पैदा करने के लिए कानून जारी किया गया है। 40 लाख अहमदी जो अपने आप को मुसलमान समझता है और यकीन रखता है, उसको यह कानून मजबूर कर रहा है कि अपने मुंह से तुम वो कहो अपने मुतल्लिक जो तुम अपने आप को नहीं समझते। यह मुनाफिकत है या वो मुनाफिकत है कि तुम उनको बेशक झूठा समझ रहे हो लेकिन अपने आप को मुसलमान ही समझ रहे हैं? पर ऐसा शख्स जो अपने आप को मुसलमान समझता है उसको कोई दूसरा जो मर्जी समझे, फर्क क्या पड़ता है? या तो उस दूसरे ने कयामत के दिन खुदा की जगह बैठा होना हो फिर तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर फैसला आलिमुल गैब ने करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें जो मर्जी समझें, तुम हमें जो मर्जी समझो, फैसला कयामत के दिन होगा। लेकिन अगर फैसले अपने हाथ में ले लिए जाएं तो फिर फर्क पड़ता है। और इस कानून की अब यह शक्ल बन जाती है कि अगर कोई अहमदी अपने आप को दिल की गहराइयों के साथ भी मुसलमान समझता हो, जिसके माने यह हैं कि तौहीद तौहीद बारी ताला का कायल हो, फरिश्तों का कायल हो, हशर नशर का कायल हो, हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का कायल हो, और इस बात का उन तमाम आमाल का कायल जो इस्लाम ने फर्ज फरमाए, कुरान करीम की हकानियत का कायल हो और ये यकीन रखता हो कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे फराइज हैं, उन पर अमल करना जरूरी है। ऐसे शख्स को ये कानून कहेगा कि हमारी नजर में चूंकि तुम मुनाफिक हो इसलिए गैर मुस्लिम होने का ऐलान करो, और गैर मुस्लिम का होने का ऐलान इन सारी चीजों का बरक्स है बिल्कुल, उसके सिवा गैर मुस्लिम बानी कोई नहीं सकता। यानी कानून कहेगा कि खुदा को वाहिद तस्लीम करते हुए भी कहो कि मैं उसको एक नहीं समझता। मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जानते हुए भी ऐलान करो कि वह नौज बिल झूठे। कुरान को सच्ची किताब, हक्कानी किताब और वाजिबुल अमल किताब समझते हुए इसकी तकरीब करो कि झूठी है, यह काबिल अमल नहीं है। और यह ऐलान करो कि यौम हशर नशर सब कहानियां और किस्से हैं और फरिश्तों का कोई वजूद नहीं, यह ऐलान करो वरना कानून तुम्हें सजा देगा। यह है वो मुनाफ़क़त दूर करने का इलाज जो इस कानून में तजवीज किया गया है। हैरत की बात है कि मुनाफ़क़त वो है या ये मुनाफ़क़त होगी कि कानून मजबूर करके ये बातें कहलवा रहा हो और दिल में कुछ और हो। तो मुनाफ़क़त की तारीफ ही बदल दी है, तारीफ ये की गई है कि जो दिल में है वो अगर तुम कह दोगे तो तुम मुनाफ़िक, और जो दिल में नहीं है वो कहोगे तो तुम्हारी मुनाफ़क़त दूर होगी। इसका जवाब भी इस आयत में मौजूद है और साथ ये कि चूंकि तुम झूठे हो हम तुम्हें अमल नहीं करने देंगे, आप पुरानी तालीमात पर अमल हम नहीं करने देंगे क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक ही कोई रिश्ता क्या है तुम्हारा पुरानी दीन, जब हमने तुम्हें गैर मुस्लिम कह दिया तो अब तुम्हारा रिश्ता टूट गया कुरान करीम से। इसलिए ये सारी बातें जो मैंने बयान की थी ये कुरानी तालीम है, तौहीद, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ऐलान, कुरान को सच्चा समझना, बरहक समझना, वाजिब तामीज समझना, ये सारी बातें कुरान से ही तो मिली हैं हमें, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो कुरान से बाहर थी। तो ये अब नतीजा निकाला जा रहा है कि चूंकि हमने तुम्हें गैर मुस्लिम समझ लिया और ऐलान कर दिया इसलिए अब तुम्हारा कुरान से ताल्लुक टूट गया है, इस शरीयत पर तुम अमल नहीं कर सकते, इस शरीयत की इस्तिलाहें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस शरीयत की इबादत के तरीके इख्तियार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी हो गई और हमने तुम्हें इस शरीयत से निकाल दिया। और कुरान करीम के मुतालिक देखिए कि वो क्या कहता है, सूरत फरमाता है वह इन तुती उल्लाह व रसूल ला यलित कुम में नाम आलिकुम शया, क्या है मुनाफिको जिनको हम मुनाफिक कह रहे हैं यानी अर्श का खुदा कह रहा है, ऐ वो लोगों जिनके दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ, इस ऐलान के बावजूद हम तुम्हें यह भी तसल्ली देते हैं कि गैर मोमिन होते हुए मुनाफिक होते हुए भी अगर तुम एक भी अच्छा अमल करोगे तो खुदा उस अमल को भी जाया करेगा। यानी कुरान पर अमल करने की दावत भी साथ साथ दे रहा है, फरमा रहा है कि मुनाफिक हो और साथ दावत नहीं बल्कि हुक्म दे रहा है, तसल्ली दिला रहा है कि हां फिर भी आओ और कुरान से फायदा उठाओ, और यह किताब किसी के लिए खास नहीं है, रहमतुल आलमीन के ऊपर नाज़िल हुई है, तमाम जहानों के लिए रहमत है, मोमिनों के लिए भी रहमत है और मुनाफिकों के लिए भी रहमत है, यानी उन मुनाफिकों के लिए जिनको खुदा मुनाफिक कहता है, और उनको भी यह तसल्ली देती है किताब कि तुम भी मेरे फैज से बाहर नहीं रहे। इस झूठ के बावजूद, इस दोगली जिंदगी के बावजूद हम तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम कुरान पर अमल करोगे और नेक अमाल करोगे तो अल्लाह उनको जाया नहीं करेगा। और यहां क्या नतीजा निकाला जा रहा है कि चूंकि हमने तुम्हें मुनाफिक करार दे दिया इसलिए कुरान पर अमल नहीं करने देंगे। बिल्कुल एक नई शरीयत नाजिल हुई है, इसलिए मुनाफिक क्यों करते हैं, तस्लीम करें कि हमारी शरीयत अलग है और हम अपनी शरीयत के डंडे से तुम्हें हांकेंगे, खुद तो मुनाफिक ना बने। कुरान करीम के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाकर के कुरानी तालीम है, ये कितना बड़ा जुल्म है कि सारी दुनिया में कुरान करीम को बदनाम करना और अपनी धांधली के लिए कुरान करीम से जवाब ढूंढना, और जवाब ना मिले तब भी कुरान की तरफ मंसूब करके वो बात शुरू कर देना, ये वाकया हो रहा है। इसलिए मुनाफ़िक़त का अव्वल तो सवाल ही कोई नहीं, मुनाफ़िक़ तो वो होता है जो झूठ बोलकर اپنے عقیدے کے برخلاف بات کرتا ہوں. ہمیں تو کہتے ہیں تم کرو اس طرح. بس منافقت سے بچانے والا قانون نہیں ہے, منافق بنانے والا قانون ہے. اور عملاً اس قانون کے فیض میں احمدیوں کے سوا ہر قسم کے خیالات کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں, اس سے فیض پا سکتے ہیں. اس کو ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, دل میں کچھ اور ہے, اوپر سے کچھ اور کہتے ہو. اور دوسری طرف کامل یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار داخل کر دیا. نوکریاں چھوڑ دیں گے, جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے, اپنے سارے حقوق تلف کروا لیں گے, لیکن دل سے جانتے ہیں اور یہ گواہی دے رہے ہیں ساتھ کہ اتنے سچے لوگ ہیں کہ شدید سے شدید تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ ہی بولیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولے. تو اپنا عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ منافق ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے, اور وہی ہے جس کو خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی کہ تم منافق ہو. پھر ایک اور اس بہانے اس عذر میں حماقت کا پہلو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمدی مسلم بن کر گویا سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اس طرح عوام الناس بچارے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسی احمقانہ بات ہے کہ جس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہو 74 کی اسمبلی میں کہ وہ غیر مسلم ہیں, وہ عوام الناس کو کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور ہیں. یا تو غیر احمدی بن کر اپنے اندر شامل کرتے ہوں پھر تو دھوکہ ہے, احمدی بن کر جب شامل کرتے ہیں تو پھر کس طرح دھوکہ ہو گیا؟ اور پھر دھوکہ کیسے ہو گیا جبکہ احمدی ہونے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ, اس کے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں تبھی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ یہ جماعت دھوکہ دینے والی نہیں ہے, کیونکہ دھوکہ دینے والا تو لالچ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا, تمہیں جائیدادیں ملیں گی, تمہیں نوکریاں ملیں گی, تمہیں فلاں نعمتیں نصیب ہوں گی. جس جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جاتی رہیں, نوکریاں چھوٹ رہی ہوں, ماں باپ گھر سے نکال رہے ہوں, بیویاں روٹ کر گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں, قیامت برپا ہو جائے شہر میں, جہاں معزز تھا وہاں کا ذلیل انسان بن جائے, باپ اپنے بیٹوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیں, مائیں اتنا ماریں کہ حلیے بگاڑ دیں مار مار, چھوٹے بھائی اٹھ کر گالیاں دیں اور منہ پہ تھپڑ ماریں, یہ سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دھوکہ دے کر ان لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہو. عجیب دھوکہ ہے. دھوکہ تو وہ ہے جو تم کرتے ہو کہ وہ دو چار مرتد جو ہیں ان کے لیے دیگیں پکتی ہیں, ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں, ان کے لیے گیٹ بنتے ہیں اور دو چار دن دعوتیں ہوتی ہیں ان کی. اس کو تو دھوکہ کہا جا سکتا ہے. یہ کس طرح دھوکہ ہو گیا کہ مار پڑ رہی ہو اور یہ دھوکہ دے کے بلایا جاتا ہے؟ عجیب قسم کا دھوکہ ہے. ہر تاریخ الٹ گئی ہے, ہر بات ہی الٹی ہو گئی. اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی, دوسرا دلیل یہ ہے کہ جو آنے والا ہے منافق نہیں ہے, نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے, نہ وہ آنے والا منافق ہے, کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی ایسی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان تو یہ ہو رہا ہو کہ فلاں شخص کسی فلاں شخص کی چوری ہو گئی ہے اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم منہ کالا کریں گے, گلے پہ سوار کریں گے, جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے, اور کوئی شخص اسے چوری نہ کی ہو وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن جائے. ایسا پاگل پن بعض عقلوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا, लेकिन आम दुनिया की अकलों में नहीं आता। अगर ये कहा जाए कि फलां चोर को हलवे तकसीम होंगे, मिठाइयां खिलाई जाएंगी और गले में हार डाले जाएंगे, फिर तो बड़े चोर के दावेदार पैदा हो जाएंगे। लेकिन जहां सजा मिलती हो वहां झूठे का काम ही कोई नहीं। वो तो कोसों भागता है ऐसे मौके से जहां झूठ, जहां सजा मिलती हो। तो अहमदियत की सच्चाई के लिए तो खुदा ने एक बार बना दी है और इन्हीं के हाथों से बनवाई है जो मुनाफिक कह रहे हैं और जो झूठ का इल्जाम लगाते हैं। अहमदियों ने खुद तो नहीं ये बाढ़ बनाई, और ये वही बाढ़ है जो हर नबी के वक्त बनाई जाती है और नबूवत की सदाकत का सबसे बड़ा निशान बनती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सा नऊज़ बिल्लाह झूठ बोला था? वो तो सिद्दीकन नबिया थे। इन नबी होते ही सच्चे हैं, पर ऐसे सच्चे थे कि अल्लाह ने बार बार सिद्दीक फरमाया। किस मुनाफ़िक़ की सजा मिली थी कि आग भड़काई थी, और उसके बाद एक के बाद दूसरे नबी के साथ यह सलूक किया गया। नामुमकिन था किसी के लिए उस जमात तक पहुंचना जब तक आग में से गुजर के ना हो जाता। फूलों की सेज तो नहीं थी, हां कांटों पर से गुजरना पड़ता था। तो मुनाफिक इस तरह पैदा होते हैं दुनिया में, मारे खाते, सजाएं हाथ लेते, शदीद तकलीफों में मुबतला होकर फिर भी मुस्कुराते हुए मजीद तकलीफों की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा ही कोई अहमक इंसान होगा जो ऐसे शख्स को मुनाफिक कहे। या अकल के पैमाने बदल जाएं, तारीफें सब तब्दील हो जाए, फिर ठीक है जो मर्जी कहो, लेकिन आम दुनिया की अकल के मुताबिक ये शख्स पागल कहलाए जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अंबिया को पागल इसीलिए कहा जाता है, कहते तू तो दीवाने हो गए, मुनाफिक नहीं कहते। पहले लोगों को अकल थी, अब इतनी भी बाकी नहीं रही। कुरान से पता चलता है कि पहले लोगों ने जादूगर भी कहा और झूठा भी कह दिया और पागल भी कह दिया और आशिक भी कह दिया अपने रब का, लेकिन कभी किसी ने मुनाफिक नहीं कहा, क्योंकि मुनाफिक की तौर नहीं होता। हां पागल हो जाए कोई तो फिर तकलीफें उठाता है। इसलिए ये बात भी नहायत ही लगव और बेमानी है कि जमात धोखे से लोगों को दाखिल करती है अपने अंदर, और इस धोखे से बचाने की खातर उनसे मुसलमान कहलाने का हक छीन लिया। जो भी आ रहा है इस वक्त, अहमदी हो रहा है, वो जानता है कि मुझसे क्या होगा, मुझे गैर मुस्लिम कहा जाएगा, घरों से निकाला जाएगा, मारा जाएगा, तकलीफें दी जाएंगी, फिर आता है। इसलिए उसको मुनाफिक कहने का तुम्हारे लिए कोई जवाब ही कोई नहीं। और यह कानून तुम्हारे अपना क्या हाल कर देगा और कर रहा है, इस पर भी गौर करो। हम तुम्हें देख नसीहत करते हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के नाम से इस कानून के नतीजे में उभरेगी उसकी शक्ल क्या होगी। अहमदी तो अपनी सच्चाई की वजह से, क्योंकि खुदा के कायल हैं और खौफ रखते हैं, पता है हमने जान देनी है, शदीद तकलीफें उठाते हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम का इनकार नहीं करते। इसलिए वो तो किसी सूरत में इस मसनूई तारीफ के अंदर दाखिल हो नहीं सकते, उनके लिए तो रस्ते बंद हैं पहले से। लेकिन एक दहरिया के लिए तो ये रोक नहीं है, एक दहरिया को तो खुली छुट्टी है, जो चाहे कहे। इसलिए पाकिस्तान में अगर 1 करोड़ दहरिया भी हो तो इस कानून की रूह से वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। एक दहरिया के लिए कौन सी मुश्किल है ये लिख देना कि मसीह मौऊद अलैहि सलाम झूठे, जो दिल में खुदा को भी झूठा समझता हो, उसका वजूद ही तस्लीम ना करता हो, सारे नबियों को वो झूठा लिखवाना हो उसे लिखवा लेंगे, उसके लिए कौन सी मुश्किल है। अगर तारीफ ये हो सच्चा मुसलमान होने की कि अव्वल से लेकर आखिर तक जितने नबूवत के दावेदार थे सारे ही झूठे थे, तो शौक के साथ ये जो मुर्तद ये दहरिया हैं ये उस पर दस्तखत करेंगे कि हाँ हम मुसलमान बनते हैं। तो 1000 मिर्जा साहब के इनकार के लिए कौन सा मुश्किल। अमलन ये हो रहा है पाकिस्तान में अहमदियों के सिवा जितने मुसलमान पैदा हुए हैं उनमें दुनिया को इल्म है, ये कौन इनकार कर सकता है इस बात का कि उनमें दहरिया शामिल नहीं है, वो सारे के सारे मुसलमान इस तारीख की रूप से, क्योंकि झूठ बोल सकते हैं। फिर जो अदालतों में झूठी गवाही देने का आदि हो, जो अपनी मनफियत के लिए इस्लाम को नजरअंदाज करने का आदि हो, उसके लिए कौन सा मुश्किल है झूठ बोलना। तो कानून अब यह बन गया कि जो सच्चे हैं, जो सच्चाई के लिए कुर्बानी देने के पर आमादा हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं, वो तो मुनाफिक हैं, और जब तक गैर मुनाफिक करार नहीं दिए जाएंगे, जब तक झूठ बोलकर हमारे अंदर दाखिल ना, और जो झूठ बोलते हैं उन पर हमें कोई इतराज नहीं, शौक से आए और मोहरें लगवाते रहें कि तुम मुसलमान हो, तुम भी मुसलमान हो और तुम भी मुसलमान हो। ये नक्शा नया एक शरीयत का उभर रहा है पाकिस्तान में, और कोई खौफ नहीं कर रहा, और फिर इसका बड़े फख्र से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सारी दुनिया में, तमाम दुनिया की हुकूमतों को ये लिख लिख कर भेजा जा रहा है कि ये वजह थी हम इसलिए मजबूर हो गए थे अहमदियों को मुनाफिक करार देने पर और इनसे मुसलमानी का हक छीनने पर। अब तो हक तुम्हें दिया ही किसी ने नहीं, ये खुदा के काम है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन मुसलमान है कौन नहीं है, जिनको मुसलमान कह रहे हो उनका जायजा तो लो कभी, वो हकीकत में इस्लाम का कायल भी है कि नहीं, कसरत से इश्तराकी हैं उनमें जो खुदा का मजाक उड़ाते फिरते हैं। आज भी पाकिस्तान के अखबारों में रिसालों में वो तमस्कर उड़ा रहे हैं, और किसी को जरूरत नहीं कि उनको गैर मुस्लिम कह सके, क्योंकि कानून ऐसा बना दिया, उस कानून की जद में वो नहीं आ सकते। ये तो वैसी बात है कि रहमतें तेरी हैं अग्यार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान, अजीब कानून है कि सवाए मुसलमानों के किसी पर हमला नहीं करना, यानी जो सच्चे हैं अपने दिल के साथ, जिनको झूठ बोलने की इस्तात नहीं है, उनको लाजिम मन ये निकाल कर बाहर कर देता है। बाकी जहां तक ताल्लुक है दूसरे सो कॉल्ड दलायल, मुबैना मजमूमा दलायल जो कसात-ए-अबीर में दिए गए हैं, उनके मुतालिक जैसा कि मैंने बयान किया था, इंशाल्लाह ताला एक एक हिस्सा उसका लेकर जमात पर वादे किया जाएगा, और मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि अब चूंकि खुदा तआला ने मौका मुयस्सर कर दिया है, इन्होंने सारी दुनिया में ये झूठ फैलाया है, इसलिए इसका जवाब जिस जिस मुल्क तक पहुंचे उसकी जुबान में तर्जमे करवाकर कसरत से तकसीम करवाया जाएगा, और खुदा तआला के फजल से अब अहमदियत को एक तबलीग का एक बहुत अच्छा मौका मुयस्सर आ गया है। अजीब बात एक और भी है इसमें कि एक तरफ तबलीग बंद कर दी है अहमदियों के लिए, दूसरी तरफ अहमदियों के खिलाफ दलायल जारी किए। सोचना यह चाहिए कि इसका मकसद क्या है। पाकिस्तान के मुतल सोचें थोड़ी देर के लिए कि वहां आज जब अहमदियों के खिलाफ दलायल सिखाए गए मुबैना मुसलमानों को, तो यानी हम तो उन्हें मुसलमान ही कहते हैं, मुबैना इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के हवाले से, वरना जहां तक जमात अहमदिया का मौका है इसमें गलती कोई ना लगे, जमात अहमदिया उनको गैर मुस्लिम कभी नहीं कहती, ना कभी कहा है ना आइंदा कहेगी। कुफर दूना कुफर का मसला जहां तक है उसके अंदर हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता रहा है, अब भी कह रहा है, लेकिन गैर मुस्लिम कहना और बात है। गैर मोमिन को काफिर कहते हैं, और कुरान से पता चलता है कि खुदा तआला ने खुद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम को कि इनको कह दो तुम गैर मोमिन हो, इसी को काफिर कहते हैं, लेकिन साथ ही गैर मुस्लिम नहीं कहा, ना मजबूर किया कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम कहो, ये दो अलग अलग इस्तलाहें हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं मुबैना तो मुराद ये नहीं कि हम मुसलमान नहीं तस्लीम करते, हम तो ये इकरार करते हैं कि जो मुंह से जो कहता है जिस मजहब की तरफ मंसूब होता है उसे यह हक बहरहाल दिया जाएगा कि वो उस मजहब की तरफ मंसूब हो। जब हम कहते हैं काफिर है तो मुराद सिर्फ यह है कि फिल हकीकत जहां तक उस मजहब की के मांस का ताल्लुक है वो उससे आ रही है, और मुराद सिर्फ इतनी है कि जब वो वफात पाएगा तो खुदा तआला के हजूर हाजिर होगा, उसके आमाल उसको काफिर बता रहे हैं या उसके बाद बद अकायद उसको काफिर बता रहे हैं, इससे ज्यादा इस हमारे फतवे की कोई हकीकत नहीं। तो बहरहाल ये जो दूसरे मुसलमान हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इनके मुतल्लिक हमें, हम पर ये पाबंदी है कि इनको तबलीग नहीं करनी। हालांकि ये सोचा ही नहीं गया कि तबलीग तो दो धारी तलवार होती है, एक तरफ से बंद हो ही नहीं सकती जब तक दूसरी तरफ से बंद ना हो। तो अवामुन्नास पाकिस्तान के बेचारे सोच ही नहीं सके कि हुआ क्या है। वाकया यह है कि उन पर भी यह पाबंदी आयद हो गई है कि उन्होंने हमें तबलीग नहीं करनी। अगर ये नहीं है तो फिर ये शक्ल निकलती है, हुकूमत पाकिस्तान का यह फैसला हो गया कि अगर अहमदियों को कोई गैर अहमदी तबलीग करे तो उन्होंने नहायत खामोशी से तबलीग सुननी है और जवाब में कुछ नहीं कहना। समझ आए या ना आए, ये अक्सरफा बात सुनते चले जाएं और जवाब में कुछ ना कहें। ये कानून है कहां से लिया, कुरान से हासिल किया, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज किया। आंजूर तो जब तबलीग करते थे तो दो पहलू नुमायां थे, एक ये कि दुनिया का कोई फर्द बशर आपकी तबलीग के फैज से बाहर नहीं रहा, ना कुरान ने इजाजत दी कि किसी को छोड़ दो। यहूदियों के पास भी गए, दुख उठाकर मारे खाकर भी गए और तबलीग की। तो ये कौन सी शरीयत है कि अहमदियों को तबलीग नहीं करनी, और अगर तबलीग करनी है तो फिर ये सुन्नत कहां से निकाली कि तुम बोली जाओ और अहमदी नहीं बोले। क्योंकि आगरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये तबलीग का नमूना नहीं था। आप तो घंटों देते थे गैरों को, उनको तबलीग करते थे, फिर उनकी बातें सुनते थे, बड़े तहम्मुल और प्यार से सुनते थे। बल्कि ऐसे भी थे जो आकर नहायत गुस्ताखियां कर जाते थे, बड़ी सख्त गुस्ताखियां कर जाते थे गुफ्तगू के दौरान, और उनको मौका देते चले जाते थे। कुल उन्ज़ुरना, जो कुरान करीम में हुक्म आता है, राय ना मुंह बिगाड़ करना कहा करो, ये किस तरह इशारा है? ये तो नहीं था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं होता था कि क्या हो रहा है। गुफ्तगू होती थी, मजारिस होती थी, यहूद आते थे, कई किस्म के सवाल करते थे, जवाब देते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम को तबलीग हो कर सकता है यहूदी नाउज बिल्ला मंदारे, और आपको तबलीग नहीं हो सकती, ये कौन सा कुरान करीम निकाला नया? और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते थे और फिर जवाब सुनते थे, और नई शरीयत यह है कि तुम्हें अगर तबलीग की जाएगी तो जवाब की इजाजत भी होगी, वरना तबलीग ही नहीं की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो गैर शरी तौर पर बाकी सब मुसलमानों का हक तुमने छीन लिया, शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ हक से छीना। और अगर हमें जवाब की इजाजत नहीं तो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ हमारा हक छीन लिया। जिस पहलू से इसका तजिया करें, हर पहलू अहमकाना है, एक भी अकल वाला पहलू इसमें नहीं। यही वो मौका है जिसके मुतल कुरान करीम फरमाता है, अलैसा मिनकुम रजुल रशीद, कि क्या हो गया है कौम तुम्हें, क्या एक भी अकल वाला तुमने बाकी नहीं रहा? गौर करो तुम कहां पहुंच गए हो, हर बात को तुमने उलट कर दिया है, हर मंत्री नतीजे से महरूम रह गए हो, और इल्म नहीं हो रहा तुम्हें कि कहां पहुंचा देगी तुम्हें यह मंत्र, तुम्हारे दलाइल तुम्हें किस तरह धकेल के लेके जा रहे हैं। बस अब जो वाइट पेपर है जिसका मैंने जिक्र किया कि तफसील से मैं बाद में बताऊंगा, इसका इस वाइट पेपर में तो यही शक्ल बनती है कि हमारी शरीयत के मुताबिक हम तुम्हारे ऊपर जितने चाहें इल्जाम लगाते चले जाएं, तबलीग ये है हमारी, हम तुम्हें तबलीग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें जवाब की इजाजत नहीं। यह सुन्नत तो कुरान से साबित होता है कुफार की थी, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नहीं थी। वो ये कहते थे कि अपनी बातें कर लिया करो, और जब वो कुरान पढ़ने लगे आगे, जब वो जवाब देने लगे तो शोर मचा दिया कि ये नहीं हम कर लेंगे। तो सुन्नतें बता रही हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अपने पांव पर तो कुल्हाड़ी ना मारें, अगर हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो आप तो मुस्लिम बने, ये मेरी नसीहत है आपको। लेकिन अगर नहीं बनते और लाजमन जबर का फैसला कर लिया है तो फिर कुरान को तुम बेचारे को इल्जाम तराशी से महफूज रखें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना भी तो हमला ना करें, खुलकर कहें कि हम एक नई शरीयत के ताबे हैं जिसका ना कुरान से ताल्लुक है ना सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक है। फिर यह दिलदारी तो हमारी नहीं होगी कि कुरान पर आप हमला कर रहे हैं और हमें जवाब की इजाजत है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बिगाड़ रहे हैं और दुनिया के सामने नहायत भयानक नक्शा पेश कर रहे हैं और हमें जवाब की इजाजत। ठीक है, जहां बस चलता है आप जवाब की इजाजत ना दें, लेकिन जहां हमारा बस चले हम बड़ी कुव्वत और बड़ी फहम के साथ, हिकमत के साथ, शराफत के दायरे में रहते हुए कसरत से जवाब देंगे। इसलिए अहमदी का फर्ज है कि इनफरादी तौर पर भी वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए और जब लिटरेचर मुहैया किया जाए तो उसकी तकसीम में भी भरपूर हिस्सा लें। एक पंफलेट ये हजरत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहि सलाम और अहमदीत के खिलाफ शाया करें तो 10 पंफलेट तो जरूर से 10 शाया किया जाएगा जवाब में, और फिर जब खुदा तौफीक बढ़ाएगा तो फिर एक के जवाब में 100 भी हम शाया करने लगेंगे इंशाल्लाह। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله। एक और नहायत ही दर्दनाक और भयानक ताजा जुल्म की इतला आई है, उस सिलसिले में मैं रावल जमात को दोबारा दुआओं की तरफ मुतवज्जे करता हूं। अपने मजलूम भाइयों के लिए बहुत दुआ करें। पहले तो इन्होंने वो बाजवा साहब और मौलिक खुर्शीद साहब वगैरह के केस में एक बिल्कुल झूठा और फर्जी मनगढ़ंत केस उनके खिलाफ बना लिया और कहा कि ये बूढ़े बेचारे और बीमार ये एक मौलवी को अगवा कर रहे थे, उस वक्त पकड़े गए। और जब दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज हुआ तो एक गन दूसरे गन पर मायल कर देता है, एक झूठ दूसरे झूठ की अंगेज करता है। इन्होंने इस जुल्म के ऊपर मजीद जुल्म यह किया कि वो जो दो नौजवान पकड़े हुए थे उन पर इतने दर्दनाक और हौलनाक मजालिम किए हैं पुलिस ने कि उनके तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज ऐसी भयानक ऐसी बेहयाई के साथ उन पर जुल्म किया गया है कि इस्लाम के नाम पर झूठ उगलवाने के लिए इस कदर मजालिम। ताज्जुब है कि इनको कोई खौफ ही नहीं है कि हमने खुदा को जान भी दे दी है कि नहीं। उसको तो मैंने उसे इतला के मुतालिक तो ऐलान कर दी, इनको बता हदायत दे दी है कि सारी दुनिया में इस वाक्य को मुस्तैद करना चाहिए और सजा ये दे रहे थे कि उन बुड्ढों को शामिल करो और तहरीर लिख के दो हमें कि वो दोनों तुम भी अगवा करना चाहते थे और वो दोनों भी अगवा करवाना चाहते थे और उनकी हदायत पर तुम अगवा करवा रहे, ताकि दुनिया के से जो एहतजाज आ रहे हैं उनको फिर वो तहरीर शाया करके दिखा दें कि ये देख लो तहरीर। और एक एक रात में बाद में 5-5 दफा वो बेहोश हुए मारे खा खा कर और नंगे बदन करके उनको गांव वालों को दावत दी गई कि आए उनको देखें। اور انتہائی گندی مغلظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان کے والدین اور ان کے عزیزوں کے خلاف جو گندی گالیاں سوچی جا سکتی ہیں وہ دی گئیں, اور پھر بلیڈوں سے ان کو چیرا گیا اور ان کے اوپر مرچیں پھینکی گئیں, ہر قسم کے الٹے لٹکائے گئے, یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہوئے. ہر دکھ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کو دیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی. اور باجوہ صاحب اور ان بیچارے مظلوم کے متعلق انہوں نے آخر وقت تک نہیں دھیان دیا, اور جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا, اس سے زیادہ تو پھر موت رہ گئی تھی باقی, تو اب اس کیس کو پولیس نے سفارش کر دی ہے کہ ماشاء اللہ میں آزمایا جائے, کیونکہ سول ہتھیار جو ہمارے پاس تھے وہ تو ہم نے استعمال کر لیے, یہ تو ہتھکنڈے ہیں نا سول, ان سے بڑھ کر تو سول کے پاس ہتھکنڈا کوئی نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ جس کو چاہے موت کی سزا دے دے, تو اب وہ کیس ماشاء اللہ میں بھیجوایا جا رہا ہے. تو دعا کریں, ان لوگوں سے واسطہ ہے اس وقت اسلام کو, اور اسلام پر یہ ہیں ظلم کرنے والے انتہائی خوفناک. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور باز رکھے, کیونکہ یہ معاملہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے سوائے اس کے کہ ایسی قوموں کی ہلاکت کی تصویر لکھ دیجیے, پھر اور کچھ رہتا نہیں باقی. اپنی بے حیائی میں اور ظلم اور صفاقی میں اور سچائی کو جھٹلانے میں ایک حد سے آگے نکل چکے ہیں. بظاہر تو واپسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن دعا کرنی چاہیے, ہمارا فرض ہے, ہمارا اپنا وطن ہے, ہمیں اس سے محبت اور پیار ہے کہ چند شریروں کی وجہ سے سارے وطن پر عذاب آ جائے اور مصیبت پڑے, اس کا بھی ہمیں دکھ پہنچنا ہے, ان کو کہاں سے اس کا دکھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ دعا کی تحریک جو کر رہا ہوں خاص طور پر یاد رکھیں, راتوں کو اٹھیں تہجد میں دن رات ان بھائیوں کے درد کی حالت کو سوچ کر اور اپنی اس نعمت کی حالت کو سوچ کر کہ آپ آرام میں پھر رہے ہیں, خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, یامر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربیٰ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.